अब हम आपके लिए एक दूसरा चैप्टर भूमि सुधार शुरू कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा कृषि के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाती है। ग्रामीण समाज में कृषि जीवन का एक आधार है। ग्रामीण लोग इसलिए अपनी भूमि से प्रेम करते हैं। जब तक वह बिल्कुल विवश नहीं हो जाते अपनी भूमि को नहीं बेचते हैं। भूमि उनके जीवन का एक अंग है, इसीलिए वह अत्यंत परेशानी की अवस्था में भी बेचता नहीं है बल्कि गिरवी रख देता है। कृषि ग्रामीण जीवन का ढंग है, इसलिए ग्रामीण लोग उसी में रत रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों के द्वारा किराए पर भूमि जोतने वालों, बटाईदारों में कृषि करने वालों तथा भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। भूमि स्वामित्व, मलिकत्व और भूमि उपयोग। पहला, सामुदायिक स्वामित्व। आदिम समुदाय में भूमि संपूर्ण गांव अथवा समूह के रूप में कभी कभी होती है। इस अवस्था ने उद्विकासवादी संप्रदाय के सामाजिक सिद्धांतवादियों को यह मानने को बाध्य किया है कि सामुदायिक स्वामित्व समस्त भू स्वामित्व का मौलिक आदि रूप था। लेकिन मानव विज्ञान आंकड़ों का विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात लोवी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पूर्ण सामुदायिक स्वामित्व के ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं और जिनको कुछ विशेषताओं से स्पष्ट किया जा सकता है, अर्थात गोत्र और गांव की अनुरूपता और शिकारी अथवा पशुपालन अर्थव्यवस्था कुछ शिकारी व्यक्तियों में समूह के लिए भूमि अधिकार नहीं है, जिससे बृहत प्रभुता संपन्न समूह में गोत्र अथवा गृहस्थी में होने वाले स्वामित्व के उदाहरण अधिक पाए जाते हैं। बिड्डा जनजाति में जिनकी जनजातीय सीमा की रक्षा व्यावसायिक धनुषों बाणों से की जाती थी तथा जिससे आक्रमणकारियों को मृत्यु के घाट उतारा जाता था, संपत्ति अधिकार का विकेंद्रीकरण इतना अधिक था कि विशेष परिवारों की भूमि का मानचित्र बनाना तक असंभव था। एक व्यक्ति अपने भाई की भूमि पर भी बिना उसकी अनुमति के शिकार नहीं करता और यदि शिकार किसी मित्र के क्षेत्र में भी हो जाए तो उस भूमि का स्वामी शिकार के मांस का एक भाग लेने का अधिकारी हो जाता था। इन समाजों में भी भू स्वामित्व के अधिकार भिन्न भिन्न प्रकृति के थे। उदाहरणार्थ कोई भी बेटा अपनी भूमि का हस्तांतरण अपने कुटुंब के समस्त प्रौढ़ व्यक्तियों की सहमति के बिना नहीं कर सकता था। करीरा जनजाति में भूमि का स्वामित्व पिता के वंशजों के हाथ में था तथा कोई भी व्यक्ति संपूर्ण भूमि पर स्वेच्छा से शिकार कर सकता था, किंतु भूमि के हस्तांतरण की बात वंश परंपरा के माध्यम के बिना कोई सोचता भी नहीं था। पशुपालक व्यक्ति अपनी सामुदायिक भूमि का विभाजन छोटे छोटे भागों में नहीं करते थे, उनमें व्यक्तिगत स्वामित्व के प्रति एक सुविकसित भावना थी जहाँ तक पशुधन का संबंध था लेकिन भूमि के संबंध में नहीं। एक मसाई व्यक्ति अपने क्षेत्र के सभी निवासियों के साथ चरागाह पर कार्य करता है और जब घास समाप्त हो जाती है तो सामान्य रूप से पृथक कार्य करना करता पाया जाता है। किर्गिज जनजाति में भूमि पर सामुदायिक एवं कौटुंबिक दोनों प्रकार का स्वामित्व मिलता है। यह पशुओं के भेद तथा वर्ष के मौसम के अनुसार होता था। ऊँटों के चरागाह संपूर्ण जनजाति की संपत्ति होते थे, किंतु दूसरे पशुओं के लिए प्रत्येक परिवार का शीतकालीन चरागाहों पर पृथक स्वामित्व होता है, जबकि ग्रीष्मकालीन चरागाहों पर संपूर्ण समुदाय का स्वामित्व होता है। कृषक समुदाय में सामुदायिक भू संपत्ति की व्यवस्था बहुत कम दिखाई पड़ती है। ऐसी व्यवस्था केवल वहाँ मिलती है जहाँ संयुक्त कुटुंब एक गाँव का निर्माण करता है। दूसरा, सामंतवादी। सैद्धांतिक रूप में सामंतवादी प्रायः स्वीकार करते हैं कि भूमि का स्वामी राज्य होता है। केंद्रीय राजनीतिक प्रतिधाकार बड़े बड़े हिस्सों को धनी व्यक्तियों को प्रदान करता है जो स्वयं इसको किसी को भी पुनः प्रदान कर सकते हैं, जिसमें वे स्वयं ही एक या दूसरी प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामंतवादी संरचना समतावादी के अतिरिक्त सब कुछ है, लेकिन कुछ भी अपने राज्य के स्वामित्व के सिद्धांत में यह सामुदायिक है, किंतु जहाँ केंद्रीय सरकार निर्बल होती है वहाँ सरकार का सामंतवादी शक्ति पर नियंत्रण ढीला रहता है और सामंत अपने क्षेत्र में अधिक विकसित संपत्ति प्राधिकारों का उपयोग करने लगते हैं। प्राचीन समाजों में सामंतवादी प्रथा का सबसे अधिक विकास अमेरिका में देखा जाता है। यहाँ का बादशाह इतना शक्तिशाली दिखाई पड़ता है कि यह समस्त भू संपत्ति को शाही संपत्ति मान ले, किंतु वह इतना शक्तिशाली कभी नहीं रहा कि समस्त भू संपत्ति पर अपना नियंत्रण रख सके। उदाहरणार्थ थोगा जनजाति में बादशाह लगान लेकर भू संपत्ति बड़े बड़े व्यक्तियों को बांट देता है जो अन्य व्यक्तियों के बीच भूमि का बंटवारा करके उनसे लगान वसूल करते थे। इसी अवस्था को भारत में जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस तरह कृषकों का अपनी संपत्ति पर इस दृष्टि से पूर्ण अधिकार होता था क्योंकि उनके वंशज उस पर खेती करके अपनी जीविका चला सकते थे। यहाँ तक कि गांव के जमींदार तक को भी जिसने वह भूमि कृषक को दी थी, कृषक के खेत या बाग में कुछ लेने के लिए उससे आज्ञा मांगनी पड़ती थी। किंतु यदि कृषक अपनी भूमि छोड़कर चला जाता था तो भूमि फिर सामंत को ही हो जाती थी और वह फिर किसी दूसरे व्यक्ति को लगान पर भूमि दे सकता था। इसी प्रकार यदि सामंत स्वयं कहीं दूसरी जगह चला जाता था तो जमींदार की वह अधीनस्थ भूमि बेची या हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी। उस भूमि का स्वामित्व राज्य के हाथ में चला जाता था। युगांडा में सामंती मुखियाओं की भूमि के खंडों के बदले में किसानों को उनके लिए कार्य करना तथा उनकी सैनिक रक्षा करना एक दायित्व है। जटिल समाजों में सामंतवाद की विशेषताएं पुरातन समाजों के ही समान है, लेकिन विषम प्रकार की। यह सामान्यतः इस आधार सिद्धांत पर आधारित है कि केंद्रीय शक्ति अर्थात राजा या पुरोहित राजा की समस्त राष्ट्रीय सीमाओं पर सर्वोच्च शक्ति होती है। किंतु व्यवहारिक रूप से यह देखा जाता है कि असफल संचरण, असमर्थ नौकरशाही के तथा राजा और प्रजा का पारस्परिक संबंध बहुत दूरदर्शी होने का कारण भू संपत्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण केवल क्षेत्रीय स्तर पर होता था। इसके अतिरिक्त भरण पोषण का मूल स्रोत कृषि, दुर्लभ मुद्रा और व्यापार कम होने के कारण राज्य को निम्नांकित चार वस्तुओं पर आश्रित रहना पड़ता था, भूमि, श्रम, भोजन और सैनिक सेवा। केंद्रीय सरकार अपने शक्तिशाली मित्रों को भूमि प्रदान करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयत्न करती थी। इसके प्रतिदान में ये मित्र केंद्रीय सरकार की आर्थिक एवं सैनिक सहायता करते थे। इसी आर्थिक सहायता एवं सैनिक सेवा प्राप्त करने के लिए इनको भू संपत्ति का समझ कर बंटवारा करना होता था। ये ऐसे व्यक्तियों को भूमि देते थे जो समय समय पर उन्हें भोजन एवं सैनिक सेवाएं प्रदान करने की योग्य हों। कृषक वर्ग अधिक संख्या में न होने के कारण अपने अधिकार से बंधे रहते हैं और अनेक प्रयोजनों के लिए वे भूमि का प्रयोग उसे अपनी समझ कर करते हैं। इसलिए सामंतवादी व्यवस्था विश्रृंखलित हो जाती है तथा उसके स्थान पर वैयक्तिक पद्धति का, जिसमें कुटुंब भूस्वामी होता है, जन्म होता है। किंतु इस विश्रृंखलित व्यवस्था से नियमित समाज का निर्माण केवल तभी हो सकता है यदि राज्य अपने को बनाए रखे और चरित्र में कुछ परिवर्तन कर दे। तीसरा, राष्ट्र का स्वामित्व। सिद्धांत यह है कि राष्ट्रीय क्षेत्र पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है, उस पर किसी व्यक्ति, कुटुंब, व्यक्ति या निगमों का अधिकार नहीं होता। इसलिए भूभागों को व्यक्तिगत मुखियाओं के बीच विभाजित न करके कृषि कार्य पर नौकरशाही का नियंत्रण होता है, जिनके पुरस्कार का निर्धारण उनके वेतन द्वारा होता है। इससे शक्ति का केंद्रीकरण और नियंत्रण प्रत्यक्ष हो जाता है। इस व्यवस्था की पराकाष्ठा रूस में पाई जाती है, किंतु ऐसी ही प्रवृत्ति इटली और जर्मनी में भी दिखाई पड़ती थी। रूस में भूस्वामित्व की प्रथा समाप्त कर दी गई तथा सामूहिक क्षेत्रों की रचना के लिए प्रयास किया गया। दूसरी ओर फासिस्ट देशों में कृषकों के भूमि स्वामित्व की संकल्पना बनी रही, किंतु सरकार की लगान, आय, पौधों की व्यवस्था, मकान का आकार, गतिशीलता, उत्पादन की निकासी आदि क्षेत्रों में समस्याएं पहले से भी अधिक दृढ़ हो गई। भूमि सुधार कार्यक्रम। स्वतंत्रता के पश्चात देश में जो भूमि सुधार नीति अपनाई गई उसका उद्देश्य कृषि संबंधों का फिर से ढांचा तैयार करना था, ताकि शोषण को खत्म किया जा सके तथा जमीन का और समस्त वितरण किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए पहला, बिचौलियां जमींदारों को समाप्त करना। दूसरा, काश्तकारों तथा बटाईदारों की खेती की सुरक्षा की व्यवस्था और लगान का विनिमय, जिसका प्रमुख उद्देश्य उन्हें स्वामित्व के अधिकार प्रदान करना था। तीसरा, कृषि भूमि जोत पर जमीन की सीमा लागू करना और फालतू जमीन को भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा छोटे छोटे किसानों को उसका वितरण। चौथा, कृषि जोतों की चकबंदी। पांचवा, जमीन के दस्तावेजों को आधुनिक बनाना तथा उसका रखरखाव। पहला, बिचौलिया जमींदार। देश के कुछ स्थानों पर अब भी बिचौलिए जमींदारों की प्रथा समाप्त नहीं की जा सकी है। इनमें बिहार के भागलपुर जिले में पानी के अधिकारों पर जमींदारी, गोवा में कम्युनिटेड, मेघालय में जोतकारी, सार्वजनिक प्रकार के धार्मिक तथा धर्मादा संस्थाओं, व्यक्तिगत सेवा, जमींदारी जिसे उड़ीसा में न्यासी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में कुछ छिटपुट स्थानों तथा महाराष्ट्र देवस्थान इनाम आदि शामिल हैं। कुछ राज्यों में बिचौलियों को समाप्त करने के लिए वैधानिक उपायों को चुनौती दी गई है तथा ऐसे कुछ मामले उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं। दूसरा, काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार उपायों के संबंध में कई राज्यों में वैधानिक प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं या जमींदारी को उपयुक्त मुआवजे की अदायगी पर स्वामित्व अधिकार देने के लिए काश्तकारों की भूमि की जुताई जारी रखने का एक अधिकार दिया गया है। कुछ राज्यों ने जमींदारों से भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है और काश्तकारों को उन्हें दे दिया है जिन्हें राज्य की कुछ रकम या प्रीमियम देना होगा। कुछ राज्यों में भुगतान पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने का पर्याप्त प्रावधान नहीं है, जैसे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। बाकी अधिकतर राज्यों में कुछ उत्तर पूर्वी तकने की अनुमति दी जाती है। उससे अधिक बकाया अतिरिक्त जमीन को भूमिहीन में निर्धारित कर दिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्धारण के अनुसार कृषि जोतों की सीमा लागू करते समय कौन पांचवें और छठे दशक के दौरान के विभिन्न राज्यों के कार्यों का अधिक था और सीलिंग में रियायतें बहुत अधिक थी। इसके अलावा कानून में कृषि जोतों की भूमि सीमा से संबंधित भूमि सुधार के कार्यान्वयन का भूमि वितरण है जिस पाठ की जो कुल भूमि पालतू घोषित की गई बहुत सी कम जमीन है विभिन्न राष्ट्रीय के आधार पर रोक दिया जाता है। चौथा, जमीन का उपयोग। सीलिंग कानून के अंतर्गत जो जमीन आवंटित की जाती है वह प्राय खराब किस्म की होती है और उससे अच्छी उपज लेने के लिए उसमें भारी निवेश और परिश्रम लगाने की आवश्यकता होती है। गांव के लोग, गरीब लोगों के पास इसके लिए इतने संसाधन नहीं होते हैं। ग्रामीण कार्य प्रोग्राम के अंतर्गत रोजगार के लिए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत भूमि सीमा कानून के तहत ग्रामीण गरीबों को आवंटित भूमि के विकास कार्यों को पूरी तरह रियायती आधार पर हाथ में लिया जा सकता है। इस प्रावधान के बावजूद सीलिंग कानून के अंतर्गत प्राप्त फालतू भूमि ग्रामीण गरीबों के लिए भूमि विकास के लिए परियोजनाओं को राज्य अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण गरीब लोग समय पर और नियमित रूप से निवेश विशेषकर ऋण नहीं प्राप्त कर पाते जिसके कारण वे ऋण के चंगुल में फंस जाते हैं। यह कहा जाता है कि बिचौलिए जमींदारों की प्रथा को समाप्त करने तथा भूमि सीमा लागू किए जाने के बाद बड़े पैमाने पर बेनामी और फर्जी तौर पर जमीन का लेन देन किया। इसके कारण फालतू भूमि का पता लगाना पहले की अपेक्षा और कठिन हो गया। यह समस्या इसलिए कि दूर हो गई क्योंकि बेनामी तथा जायदाद के कारोबार का एक वैधानिक रूप है और हाल ही में बेनामी कारोबार से संबंध कानूनी प्रावधानों में संशोधन किया गया है। संसद तथा उसके बाहर बार बार ऐसी चर्चाएं रही हैं जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार जमींदारों ने अपने सगे संबंधियों, फार्म में काम करने वाले मजदूरों तथा यहाँ तक कि जिस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है उसके नाम पर भी जमीन का हस्तांतरण करके सीलिंग कानून से बचने का तरीका अपनाया। इस प्रकार की जमीन के बारे में पता लगाना आसान नहीं है। इसी जमीन को महज बेनामी कह देना भी पर्याप्त नहीं है बल्कि भूमि सुधार कानून के उद्देश्य से उसे यह भी सिद्ध करना होगा कि इस प्रकार का लेन देन भूमि सुधारों के कानूनों से बचने के लिए किया गया। यह कार्य दस्तावेजी सबूतों के आधार पर नहीं किया जा सकता बल्कि खेतों में जाकर सही जांच पड़ताल करने से ही पता चल सकता है। इस तथ्य को सिद्ध करना भी जरूरी होता है। कागजी प्रमाण के अभाव में यह केवल मौखिक साक्ष्य या गवाहों के द्वारा ही की जा सकती है। ग्रामीण समाज में जिस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ काश्तकारों या बटाईदारों के लिए केवल गवाहियों या साक्ष्यों के आधार पर जमीन पर अधिकार के अपने दावे को सिद्ध करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। विशेषकर जब वह अत्यधिक प्रभावशाली व साधन संपन्न भूस्वामियों से चारों ओर से घिर जाता है। पांचवा, आवास अधिकार। इससे अनेक भूमिहीन लोग हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है। वे या तो अन्य लोगों की जमीन पर निर्मित मकान में रहते हैं या जमीन के मालिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए घर में रहते हैं, जिसके बदले में उन्हें अनेक प्रकार की बेगार करने पड़ते हैं। इनमें से कुछ लोगों के पास तो मकान बनाने के लिए जमीन तक नहीं होती। कुछ के पास यदि जमीन का टुकड़ा है तो उस पर झोपड़ी बनाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। एक योजना है जिसके अंतर्गत भूमिहीन ग्रामीण गरीब लोगों को विकसित आवास स्थल आवंटित किए जाते हैं जो सरकारी भूमि पर होते हैं या अधिगृहित भूमि पर होते हैं। कुछ राज्यों ने ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। जो ने लोगों की जमीन में अपने मकान बनाकर गुजारा बसर कर रहे हैं, परंतु सभी राज्यों ने इसे सुरक्षात्मक कानून नहीं बनाए हैं। छवा, जमीन के दस्तावेज। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के काफी हिस्से में जमीन के प्रलेख नहीं है और जमीन के अधिकार तथा हितों के बारे में प्रलेख तैयार करने के लिए अभी तक कोई संगठित प्रबंध नहीं किए गए हैं। इन इलाकों में भूमि प्रबंध प्रणाली में काश्त और खेती करने के व्यापक प्रबंध है। जमीन जनजातियों या उप जनजातियों तथा कबीलों की प्रथाओं और रीति रिवाजों के आधार पर बने कानूनों पर निर्भर है। किसी प्रकार का सुरक्षा करने तथा बंदोबस्त करने के लिए किसी प्रयास का इन इलाकों में रहने वाले आदिमी जनजातियों तथा उनके निवास नेता इस बात का खतरा महसूस करने लगते हैं कि यदि उनकी जमीन पर सर्वे किया गया और कोई बंदोबस्त किया गया तो उनके अधिकारों का क्षरण या ह्रास हो जाएगा। सातवां, जूतों की चकबंदी। भूमि के बिखरे हुए जूतों की चकबंदी गांव स्तर पर बेहतर विकास योजना तथा कृषि में कुशलता और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिकतर राज्यों ने इस मामले में कोई उत्साह नहीं दिखाया है। कुछ राज्यों ने इसे स्वैच्छिक रूप प्रदान किया है और इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया है या पहले से बने कानूनों को परे रखा है। केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की पर्याप्त प्रगति की है। उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि में भी चकबंदी का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक केवल 1,471 लाख एकड़ जमीन की चकबंदी की जा सकी है, जो कि कुल कृषि भूमि का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। जमीन पर बढ़ते हुए भारी दबाव तथा कृषि क्षेत्र के बाहर वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी के बावजूद इस कार्यक्रम में बहुत प्रगति नहीं हुई। आमतौर पर यह शंका की जाती है चकबंदी मामलों में ज़्यादा प्रभावशाली और बड़े जमींदारों का ही पक्षपात किया जाता है, इसलिए छोटे भूस्वामी यह महसूस करते हैं कि उनके उपकाश्तकारों तथा बटाईदारों के पास अपने जमींदारों को कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, इसलिए इस प्रक्रिया के कारण वे जमीन से बेदखल हो जाते हैं। कुछ स्थानों के चालक जमींदारों ने इसी वजह से जमीन की चकबंदी का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त सूखे तथा बाढ़ और ऐसी अन्य दैवीय विपदाओं के कारण कई राज्यों में भूस्वामियों के टुकड़े टुकड़े जमीन के जूतों को बेहतर समझा है, जिससे कि वे दैवीय विपत्तियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। जनजातियों की जमीन हड़पने के उद्देश्य से जनजातीय कृषक सेवकों के नाम पर बेनामी जमीन तथा जनजातीय बच्चों को उनके अभिभावकों से गोद लेते हैं ताकि उनकी जमीन को हड़प सके। ऐसी बातें प्रायः मिलती हैं। जनजातियों को गैर जनजातीय क्षेत्रों को हस्तांतरित करने की कार्रवाई प्रायः जमीन या हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में गलत सूचना देकर या गलत घोषणा करके की जाती है। गैर जनजाति प्रतिपक्षी प्रायः इस बात की लंबी चलने वाली मुकदमेबाजी की प्रक्रिया अपनाता है, जिससे कानूनों का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। यदि कोई जनजाति व्यक्ति अंत में कानूनी लड़ाई जीत लेता है तो अन्य पक्ष साठगांठ करके उसके जमीन के अधिग्रहण के काम में बहुत देरी कर देते हैं। यदि जनजातीय व्यक्ति को अनौपचारिक रूप से उसका कब्जा दिला दिया जाता है तो प्राय उसके विपक्षी धमकी देकर उसे अपनी जमीन पर खेती करने से रोक देते हैं। कई बार उनका हौसला पस्त करने के लिए झूठे फौजदारी के मामले चला दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर जनजातीय लोग हार मान बैठते हैं और लड़ने के बजाय चुपचाप बैठ जाते हैं। निरक्षरता तथा कानूनों और प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव में स्थिति और खराब हो जाती है। बेदखल जमीन को फिर से बहाल कराने के लिए अब तक तो जो सरकारी प्रयास किए गए हैं वे बिल्कुल अपर्याप्त रहे हैं और कुछ मामलों में इस समस्या की जटिलता और आकार को देखते हुए नगण्य रहे हैं। जनजातीय समुदायों को उनकी जमीन से अलग करने की समस्या की गंभीरता एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक जनजाति से दूसरी जनजाति में भिन्न भिन्न है, परंतु कर्ज की समस्या एक सामान्य बात है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। कर्ज की वजह से जमीन से अलग करने की कार्यवाहियाँ प्रायः होती हैं। कर्ज की समस्या भूमि से अलग होने का कारण और स्वभाव दोनों ही है।
साहूकारों और व्यापारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के कानूनी उपाय हैं, परंतु समस्या की गंभीरता को कम करने में विफल रहे हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता के कारण। भू जोतों के सीमा निर्धारण के कारण भू स्वामियों ने अपने परिवारों के सदस्यों तथा बेनामी हस्तांतरण का सहारा लिया। श्रम कानून में 1972 में संशोधन कर दिया गया था, लेकिन न्यायालयी वादों के कारण बहुत कम भूमि को अतिरिक्त घोषित किया जा सका है तथा अतिरिक्त घोषित भूमि में से काफी कम भूमि का पुनर्वितरण संभव हुआ है। राज्यों ने सीलिंग कार्यक्रमों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें व्यवहारिक रूप से निरस्त कर दिया है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वे अधूरे मन से जुटे रहे हैं। पहला, प्रशासनिक कारण। भू सुधारों के क्रियान्वयन में किसानों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ राजस्व कर्मचारी पटवारी होता है। पटवारी भी अधिकांशतः छोटा भू स्वामी होने के कारण बड़े भू स्वामियों के नियंत्रण में रहता है। कर्तव्य निष्ठा कर्मचारी को बड़े भू स्वामी अपने पैसे के बल तथा राजनैतिक शक्ति से हस्तांतरण एवं अन्य सुविधाएं देने में सक्षम होते हैं, जिससे वह कर्मचारी नव नियुक्त स्थल पर अपनी कर्तव्य निष्ठा को दोहराने का साहस नहीं करता। बीएम दांडेकर के अनुसार नौकरशाही एवं भू स्वामियों का परस्पर गठजोड़ ही भू सुधारों की असफलता का प्रमुख कारण है। दूसरा, राजनीतिक एवं सामाजिक कारक। हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण में ऐसे स्वार्थी तत्व तो अवश्य विद्यमान हैं जो कि नौकरशाही को भू स्वामियों के स्थान पर गरीबी के दुष्चक्र में पिछड़े कृषकों को भू सुधार के वांछित लाभ दिलवाने में सशक्त भूमिका अदा करने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं। गुन्नार मिडल ने भारत को उदार राज्य की संज्ञा दी है, जिसमें आमूलचूल परिवर्तनों को लागू करना कठिन है। हमारी आधारभूत परिवर्तन की समस्त नीतियाँ राजनीतिक नारों से बढ़कर नहीं है, जिन पर वे अधिकांश जनसंख्या का विश्वास उठ चुका है। कृषि से संबंधित गरीब लोगों की कमजोर राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति कारण भू सुधारों के क्रियान्वयन में पक्ष एवं विपक्ष दोनों की प्रतिबद्धता दृष्टिगत नहीं होती है। उपरोक्त सभी कारण तर्कों से हटकर पीसी जोशी ने अपना तर्क प्रस्तुत किया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र जिसमें लाभी समूह काफी सजग है, आमूलचूल परिवर्तनों का कोई भी क्रांतिकारी कदम सफल नहीं हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि किसी से संबद्ध गरीब स्वयं अपने लाभी समूह का निर्माण करें। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली अधिकांश हिंसक वारदातों के पीछे मुख्य भूमि होती है। जब तक राजनीतिक एवं प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रतिबद्धता के साथ सशक्त निर्णयों को लागू नहीं करेंगे, तब तक भू सुधार केवल किताबी जमा खर्च एवं मानसिक कसरत मात्र बने रहेंगे। भूमि सुधार कार्यक्रम के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव। भूमि सुधार कार्यक्रम देश के गांवों के विकास का एक सर्वांगीण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने भारतीय ग्राम जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। पहला, सामाजिक जीवन पर प्रभाव। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा और समाज शिक्षा की कार्यक्रम तेजी से चलाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप अज्ञानता और अशिक्षा में कमी आई है। आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलने से सामाजिक जीवन में अधिक निकटता आई और मानसिक संपर्क सूत्र में वृद्धि हुई है। ग्रामवासियों में विश्वास और साहस की बढ़ोतरी हुई। आज सामाजिक जीवन अधिक गतिशील बना है। मनोरंजन केंद्रों पर रेडियो, टीवी आदि की व्यवस्था है, जिससे ग्रामीण जनता को देश विदेश के समाचार प्राप्त ज्ञान होते हैं। उनकी जानकारी का क्षेत्र विस्तृत होता है और वे सामाजिक एकता के महत्व को अच्छी तरह समझने लगते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक एकता और सहयोग को प्रोत्साहन मिला है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन से विभिन्न रोगों और महामारियों को नियंत्रित किया गया है, जिससे ग्रामीण जन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है और ग्रामीण जीवन में अधिक निखार आया है। ग्रामीणों के मानसिक और बौद्धिक स्तर में परिवर्तन आया है। दूसरा, ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा कृषि का वैज्ञानिकीकरण बढ़ा है और लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठा है। कृषि उत्पादन में वृद्धि से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा है तथा देश खाद्यान्न की दिशा में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। ग्रामीण जनता की आय बढ़ी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए क्षितिज खुले हैं। सहकारिता के सीधे लाभ किसानों को मिले हैं। पशुपालन कार्यक्रम से ग्रामीण पशुओं की हालत में सुधार हुआ है। गांव में लघु उद्योग का विस्तार किया गया है और योजना तथा कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार किया गया है कि ग्रामीण बेकारों को रोजगार मिल सके। परिवहन और संचार के साधनों के विकास से कृषि पदार्थों का विपणन सुगम हो गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण जीवन पूर्व की अपेक्षा अधिक गतिशील हो गया है। यदि गेहूँ, चावल, तिलहन, दाल, कपास आदि के उत्पादन वृद्धि होती है और उनके मूल्य अधिक लगते हैं तो उसका लाभ किसानों को प्राप्त होता है। किसान और खेती से लगे हुए मजदूर खुशहाल होते हैं तथा रहन सहन का स्तर आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से बढ़ता है। अनेक घरों में सेफ्टी टैंक के हिसाब से शौचालय बन गए हैं और अब जो भी चाहे अपने घरों में बिजली का पंखा चला सकता है। व्यक्ति बिजली की रोशनी का उपभोग तो करता है ही है और जो उद्योगशील हैं वे अन्य काम धंधों में भी इसका उपयोग करते हैं। भारतीय गाँव में शिक्षण संस्थाओं का अभाव है जबकि अब इसका जाल बिछता जा रहा है और गांवों के ही शिक्षित युवकों को इन शिक्षण संस्थाओं में रोजगार मिला। शिक्षा के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार और विकास में सहायता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की दिशा में कार्यक्रम सहायक हुए हैं। एक समय था जब गांव वालों को खेती के लिए बीज खरीदते समय या अन्य खर्च के लिए महाजन के पास जाना पड़ता था और किसान का जीवन ब्याज पर ब्याज देते ही बीत जाता था। वह कितना ही दे उसका ऋण समाप्त नहीं होता था। आज देश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना हो गई है और किसान को खेती के लिए, पशुपालन के लिए, पंप सेट खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए, ट्रैक्टर या थ्रेसर खरीदने के लिए सस्ती ब्याज की दर पर ऋण मिलता है। गाँव में अनेक दिशाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ग्रामीण जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं फिर भी अभी बहुत से गाँव अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। बहुत से ग्रामीण अभी भी गरीबी के रेखा स्तर से निम्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तीसरा, राजनीतिक जीवन पर प्रभाव। ग्रामीण विकास योजनाओं ने ग्रामीण जनता को राजनीतिक दृष्टि से अधिक जागरूक बनाया है। ग्रामीण जनता उनके विकास कार्यक्रम बनाने और सफलता के साथ उन्हें लागू करने में अधिकाधिक भागीदार बन रही है। गांव में नए नेतृत्व का विकास हुआ है जिसके पीछे व्यापक जन समर्थन रहता है। पंचायती राज संस्थाओं ने जो ग्रामीण विकास का भारी भार वहन किए हुए हैं देहाती जनता को अपने नेता चुनने का अवसर प्रदान किया है। फलस्वरूप जाति, धर्म, उच्च कुल, संपत्ति आदि पर आधारित परंपरावादी और समंतवादी नेतृत्व के स्थान पर प्रजातांत्रिक नेतृत्व उभरने लगा है। विकास प्रकाशन के संबंध में आकर ग्रामीण जनता राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति को समझने लगी है। उसका दायरा स्थानीय राजनीति से आगे बढ़कर प्रांतीय राजनीति को छूने लगा है। प्रांतीय राजनीति में ग्रामीण जनता की रुचि रहती है। राष्ट्रीय राजनीति की मोटी बातों को भी ग्रामीण जनता अथवा सयाने ग्रामीण लोग समझने लगे हैं। रेडियो, समाचार पत्र, कभी कभी दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों के प्रति गाँव के लोगों में रुचि काफी बढ़ गई है। भूमि सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन। भूमि सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन के लिए कुछ राज्यों में योजना आयोग ने शोध कार्यक्रम समिति द्वारा शोध कार्य कराया है। इन अध्ययनों से इन राज्यों में भूमि सुधार कार्यक्रमों के प्रभावों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। यद्यपि ये अध्ययन मुख्य रूप से भूमि सुधार के प्रारंभिक काल से ही संबंधित हैं, लेकिन हाल ही में की गई भूमि सुधार संबंधी जांचों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि प्रारंभिक काल की खोज के प्रमुख निष्कर्ष वर्तमान काल की स्थिति पर भी काफी हद तक लागू होते हैं। योजना आयोग द्वारा आयोजित भूमि सुधार मूल्यांकन संबंधी आज तक के सभी अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन कानून ने मुख्य रूप से भू राजस्व शासन व्यवस्था के सुधार को महत्व दिया, न कि जमींदार और काश्तकारों के संबंध के सुधार को। इस दृष्टि से इस कानून के जो कोई वांछनीय प्रभाव हुए हैं वे राज्य और काश्तकारों के पारंपरिक संबंधों मुख्यतः भू राजस्व प्रणाली के सुधार द्वारा हुए हैं। इस कानून का जमींदारों और काश्तकारों के संबंध में सुधार पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरा, जमींदारों और काश्तकारों के पारस्परिक संबंधों के सुधार से कानूनों के प्राय सभी राज्यों में निम्नलिखित परिणाम हुए हैं। प्राय सभी राज्यों में कानून द्वारा जमींदारों को काश्तकारी के लिए काश्तकारों से जमीन लेने की सुविधा की व्यवस्था करण, जमींदारों द्वारा बेशुमार काश्तकारों की बेदखलियां की गई है, जिसके फलस्वरूप कानून द्वारा काश्तकारों को दी गई काश्त की सुरक्षा व्यवहार में सक्रिय सिद्ध नहीं हुई है। वास्तव में जमीन जोतने वालों को भूमि हस्तांतरित करने की व्यवस्थाएं भी सक्रिय नहीं हुई, उल्टे भूमि का क्रय विक्रय सामान्य रूप से कायम रहा। सौ, काश्तकारों से वसूल किए जाने वाले लगान में चाहे वह हिस्से के रूप में हो या नगद रुपये के रूप में कोई कमी नहीं हुई, न काश्त संबंधी व्यवस्थाओं में ही कोई विशेष परिवर्तन हुआ। द, उपलब्ध खोजों और आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि जमींदारी उन्मूलन और काश्तकारी व्यवस्था सुधार संबंधी कानूनों का आर्थिक विकास के साथ कोई प्रत्यक्ष वांछनीय संबंध है। सभी अध्ययन इस बात पर बल देते हैं कि काश्तकारी सुधार कृषि उत्पादन और इसकी कुशलता के सुधार में असफल ही रहा है। तीसरा, भूमि सुधार कानून की इस असफलताओं के दो मुख्य कारण हैं। पहला, कानून में निहित दोष और कमजोरियां। दूसरा, कानून की वांछनीय व्यवस्थाओं को भी कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की अक्षमता। यदि भूमि सुधार कानून को सही रूप में सफल बनाना है तो कानून में निहित दोषों के साथ साथ वर्तमान शासन प्रणाली को नए रूप से सुसंगठित और सुदृढ़ कर इस कानून को कार्यान्वित करने योग्य बनाना होगा।